नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र, और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश बोबना। गिरीश, स्वागत आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका।
गिरीश, बहुत किंतु परंतु का मामला हो गया अगर ऑस्ट्रेलिया में भारत की टेस्ट श्रृंखला की बात करें। कल हमने चौथा टेस्ट मैच गंवाया और जो संभावनाएं हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तीसरी बार हम सभी उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय टीम फाइनल में पहुंचेगी, हालांकि वो संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन किंतु परंतु का मामला वहां पर लग गया।
बिल्कुल, अब किंतु परंतु दूसरी टीम के जो है अब ऊपर निर्भर करता है, खासकर के ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट मैच वो हारे
जी,
फिर वहां पर से श्रीलंका जब ऑस्ट्रेलिया जब श्रीलंका का दौरा करे तो वहां पर जो दो टेस्ट सीरीज की सीरीज है वहां पर भी वो हारे या ड्रॉ हो सीरीज 0-0 पे, तब उस मतलब दूसरों के अब भरोसे ही भारतीय टीम जो है लॉर्ड्स में खेल सकती है और साउथ अफ्रीका का सामना कर सकती है। तो मुझे इस लिहाज से लग रहा है कि ये बहुत ही मतलब जैसे होता है कि हाँ, ये मान के चल लेना चाहिए कि अभी भी मौका है भारतीय टीम के पास, लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस जगह पर डिजर्विंग है जो फाइनल खेलने के लिए।
जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भारतीय टीम इस किंतु परंतु के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कई बार कई टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंची है। हम उम्मीद करते हैं कि वहां एक बार फिर भारत को जगह मिले फाइनल में। लेकिन पहले सुर्खियां, राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान्स के साथ जारी। हैदराबाद में संतोष ट्रॉफी के फाइनल में केरल का मुकाबला पश्चिम बंगाल के साथ। न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में महिला क्वालिफायर जीतकर आर वैशाली क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और दिल्ली में खो खो विश्व कप की शुरुआत 13 जनवरी से, पहला मैच भारत और नेपाल के बीच। हॉकी इंडिया लीग से शुरुआत करते हैं। इस समय राउरकेला में दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान्स के साथ चल रहा है, और जो ताजा समाचार है उसके अनुसार जो स्थिति है उसमें 1-0 की बढ़त हैदराबाद ने बना ली है। और अगर टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो दिल्ली ने अब तक एक मैच खेला जिसमें शूट ऑफ में जीत के साथ वो 2 अंक लेकर तालिका में तीसरे स्थान पर है। उधर हैदराबाद को अपने पहले मैच में हार मिली है, अंक तालिका में उसका खाता नहीं खुला है। इससे पहले कल रात यूपी रुद्राज ने कलिंगा लांसनर्स को 3-1 से हरा दिया। एनरिक बोंजालिज ने 13वें मिनट पर गोल दागकर लॉन्सनर्स को बढ़त दिलाई, जबकि 45 मिनट में केन रसेल और 50वें मिनट में सुदीप चिरमाको के गोल से यूपी रुद्राज को 2-1 की बढ़त मिल गई। रसेल ने मैच के अंतिम मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर एक और गोल कर अपनी टीम की जीत तय कर दी। यूपी रुद्राज के गोलकीपर जेम्स मजारेलो को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ रुद्राज HIL 2024-25 की अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। इस टूर्नामेंट की बात करें, बड़े रोमांचक मुकाबले चल रहे हैं, और जैसे कि क्रिकेट में IPL के मुकाबले अंतिम समय तक काफी रोमांच से भरे होते हैं, गिरीश वैसे ही कुछ मुकाबले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 7 साल बाद वापसी हुई है, लेकिन रोमांच कम नहीं हुआ है।
बिल्कुल, रोमांच कम नहीं हुआ, 7 साल के बाद वापसी हुई है। पहले जब हॉकी इंडिया लीग 2017 में ख़त्म हुई थी और उसके बाद कई स्पॉन्सर चले गए थे, कई टीम ने अपने जो है टीम को निरस्त कर दिया था। अब जो आई है टीम नए अवतार में आई है, 8 टीम है मेंस में और 4 है महिलाओं में। महिला जो लीग होगी, पहली बार ऐसा होगा कि दुनिया भर में एक वुमेंस हॉकी की लीग होगी जिसमें 4 टीम है। फिलहाल आगे अगले साल जाके वो इसको विस्तार और करेंगे, 5 या 6 टीम हो सकती है। तो फिलहाल अभी राउरकेला में जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में जो मैच चल रहा है वो है दिल्ली एसजी पाइपर्स और हैदराबाद तूफान्स का। और धर्मेंद्र, आप जिस वक्त आप ये खबर पढ़ रहे थे तो उसी वक्त गोल आया, और आपको मैं बता दूं कि अभी हमारी बातचीत के दौरान हैदराबाद ने एक 2-0 की बढ़त ले ली है। तो 11वें मिनट पे जो गोल आया हैदराबाद का वो एक पेनल्टी कॉर्नर के जरिए था। अमनदीप लाकरा ने बेहतरीन गोल किया और उनके पावर शॉट्स ने वो करामत दिखाई जो पिछले मैच में जो हैदराबाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनका सराची रण बंगाल टाइगर्स के साथ जो मैच हुआ था वहां पर हैदराबाद को 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे,
गोल नहीं कर सके,
और उसमें से सिर्फ एक को ही वो गोल में तब्दील कर बैठे थे। तो कोच पाशा गैडमैन के लिए सबसे बड़ा था, डच है, हॉलैंड के कोच है, और 2020 में वो कनाडा के भी कोच रहे हुए हैं, तो उनके पास ये था कि आज कैसे वो टैक्टिकल चेंजेस करें, और उसका नतीजा ये हुआ कि 11वें मिनट में पहला उन्होंने गोल बढ़त हासिल की और उसके बाद दूसरा पेनल्टी कॉर्नर किया, वहां भी गोंजालो पैलेट जो इनके जो सबसे, ये एक ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा रकम में बिके हैं इस हॉकी इंडिया लीग में, और उन्होंने ये गोल किया, तो इन इस खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा एक दबाव था कि ये परफॉर्म करें, और आज उन्होंने कर दिखाया। तो अब देखिए जो टीम दिल्ली एसजी पाइपर थी वो पहला मैच जीती थी, इस संस्करण का पहला मैच वहां जीत के थी, आज कम से कम अभी पहले जो क्वार्टर में ही इन्होंने दो गोल हासिल कर लिए।
जी उधर फुटबॉल की बात करें तो हैदराबाद में 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए संतोष ट्रॉफी के फाइनल में इस समय केरल का मुकाबला पश्चिम बंगाल के साथ चल रहा है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थी। पश्चिम बंगाल रिकॉर्ड 47वीं बार फाइनल में पहुंचा है, जबकि केरल अपना 16वां फाइनल मुकाबला खेल रहा है। बंगाल ने 32 बार संतोष ट्रॉफी जीती है, जबकि केरल 7 बार का चैंपियन रहा है। कौन सी टीम आपकी फेवरेट है आज गिरीश?
देखिए हमारा तो पश्चिम बंगाल से ही नाता है, तो पश्चिम बंगाल तो यहाँ फेवरेट है। मैं न्यूट्रल की बात करूंगा, काफी अभी जो फर्स्ट हाफ का जो मैच हुआ है और दोनों ही टीम के डिफेंस ने अच्छा खेला, इस वजह से गोल रहित अभी तक जो है ड्रॉ फर्स्ट हाफ रहा, और वहां पर वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की तरफ काफ़ी बार जो उनके पोजीशन में बॉल आई लेकिन उसका वो फायदा नहीं उठा पाए। और आपको एक जो अपने श्रोताओं को बता दें कि 45 दिन तक ये प्रतियोगिता चली, करीब 87 मैच के बाद आज ये फाइनल मैच खेला जा रहा है, और दोनों राज्य जो केरल और बंगाल है एक फुटबॉल कल्चर है, और वेस्ट बंगाल 47 बार फाइनल में 32 बार वो जीती हुई टीम है, और केरल 16 फाइनल में 7 बार। हालांकि 2017-18 और 2021-22 का जो संस्करण है वो केरला ने जीता है, तो उस लिहाज से केरला की जो टीम है वो आप उसके साथ पलड़ा भारी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा ये भी है धर्मेंद्र कि दोनों टीम ने 10-10 मैच खेले और 9-9 जीते और एक ड्रॉ खेला, एक भी मैच अब तक हारा नहीं है। तो आज ये पहला मौका होगा, जो भी टीम जीतेगी वो विजेता और उपविजेता पहला मैच हारेगी।
जी इंडियन सुपर लीग की भी बात कर लेते हैं, जहां 14वां सप्ताह कल समाप्त हो गया। इस सप्ताह के अंतिम मैच में कल नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड ने मुंबई एफसी को 3-0 से हराया। 16वें सप्ताह की शुरुआत 2 जनवरी को मोहन बगान और एफसी हैदराबाद के मुकाबले से होगी। आईएसएल 2024 के पहले चरण में धारदार आक्रमण, रक्षात्मक सुदृढ़ता और कुछ महत्वपूर्ण पल इसके आकर्षण रहे। एक रिपोर्ट सुनते हैं।
इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024-25 सीजन का मैच वीक 14 कल समाप्त हुआ, जिसमें पिछले सीजन की तुलना में उल्लेखनीय आक्रामक, रक्षात्मक और समग्र रणनीतिक बदलाव देखने को मिले। आंकड़े न केवल एक्शन से भरपूर अभियान की रोमांचक तस्वीर पेश करते हैं, बल्कि उन शानदार कहानियों की नींव भी रखते हैं जिन पर आगे नजर बनाए रखने की जरूरत है। इस बार 14वें मैच सप्ताह के समापन तक हुए गोलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें कुल 252 गोल देखे गए, जो पिछले सीजन की इसी अवधि में 204 गोलों में से 23.5% अधिक है। यह इजाफा दिखाता है कि इस बार अधिक आक्रामक फुटबॉल खेली जा रही है, खिलाड़ियों की व्यक्तिगत आक्रमण क्षमता बेहतर हुई। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के अलाइद्दीन अजारी 13 मैचों में 14 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं, और वह पिछले सीजन के टॉप स्कोरर रॉय कृष्णा से आगे निकल चुके हैं। इस बार बढ़ती हुई आक्रामकता के कारण रक्षात्मक रिकॉर्ड पर थोड़ा असर पड़ा है। 2023-24 में क्लीन शीट की संख्या 44 थी, जबकि 2024-25 में थोड़ी कम होकर 43 हो गई है। इसके बावजूद मोहन बागान सुपर जायंट, बेंगलुरु एफसी और मुंबई सिटी एफसी ने 5 या उससे अधिक क्लीन शीट दर्ज कर रक्षात्मक अनुशासन दिखाया है। दिलचस्प बात यह है कि क्लीन शीट यकीनन टीमों की बेहतर आक्रमण क्षमता को दर्शाती है, जहां 2023-24 के शुरुआती 14 मैच वीक के दौरान 85वें मिनट में से लेकर मैच खत्म होने तक 24 गोल किए गए थे, वहीं इस बार इसी समय अवधि में 34 गोल हो चुके हैं। अंतिम क्षणों में गोलों की वृद्धि दर्शाती है कि टीमें अंत तक जीत के लिए लड़ती हैं। इसके अलावा आईएसएल 2024-25 में अब तक 16 बार पिछड़कर वापसी भरी जीत देखने को मिली है, जो टीमों के जुझारूपन को दर्शाती है। आईएसएल 2024-25 लीग के इतिहास में सबसे रोमांचक सीजन होने जा रहा है। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में महिला क्वालिफायर जीतकर भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना लिया। उन्होंने महिला वर्ग में 11 में से 9.5 अंक लेकर बाजी मारी। क्वार्टर फाइनल में वैशाली का सामना चीन की झू जिनेर से होगा। दिल्ली में खो खो विश्व कप की शुरुआत 13 जनवरी से होगी। पहला मैच भारत और नेपाल के बीच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। खो खो विश्व कप आयोजन समिति के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने बताया कि महिला वर्ग का फाइनल 19 जनवरी को शाम 7 बजे से और पुरुष वर्ग का फाइनल रात 8:15 बजे से होगा। क्रिकेट की बात करें तो मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट मैच में कल हार के बाद भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की संभावना कम हो गई है। हालांकि उम्मीदें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। भारत के फाइनल में पहुंचने का समीकरण क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं।
बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 185 रनों की हार ने न सिर्फ टीम इंडिया को सीरीज में 2-1 से पीछे कर दिया है बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तीसरी बार पहुंचने की उसकी उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है। दोनों टीमों के बीच अब अंतिम टेस्ट मैच 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका पहली बार WTC के फाइनल में जगह पक्की कर चुका है। दूसरे स्थान के लिए ऑस्ट्रेलिया जहां फिलहाल फेवरेट नजर आ रहा है, वहीं भारत और श्रीलंका की भी उम्मीदें कायम है। न्यूजीलैंड से 3-0 की शिकस्त और ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्तमान श्रृंखला में पिछड़ रही भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए न सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट मैच जीतना होगा बल्कि दूसरी टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा। अगर भारत सिडनी में हार जाता है या फिर टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है तो उसकी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, लेकिन जीत की हालत में उम्मीदें बढ़ जाएंगी। हालांकि इसके लिए भी ये जरूरी होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब अगले महीने श्रीलंका का दौरा करे तो उसे या तो 2-0 या फिर कम से कम 1-0 से हार मिले। तीसरी स्थिति ये भी है कि अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज 0-0 से ड्रॉ होती है तो भी भारत फाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन अगर सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो या फिर ऑस्ट्रेलिया 2-0 या 1-0 से उसे जीत ले तो भारत की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
और साल 2024 का आज अंतिम दिन है। भारतीय खेलों के लिए 2024 ऐतिहासिक वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा और मनु भाकर के यादगार प्रदर्शन से लेकर 2020 विश्व कप में भारत की जीत तक का सफर देश के लिए इस साल यादगार रहा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
साल 2024 खट्टी मीठी यादों के साथ हमें अलविदा कहने को तैयार है। ये ऐसा साल रहा जिसमें भारतीय खेलों ने ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छुआ। ओलंपिक खेलों में मनु भाकर 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। वहीं नीरज चोपड़ा ने पेरिस में सिल्वर मेडल लाकर जैवलिन थ्रो को नई ऊंचाइयां दी। भारतीय हॉकी टीम शूटर स्वप्निल कुशाले और पहलवान अमन सहरावत ने भी देश के लिए ओलंपिक में इस साल मेडल जीते। भारतीय क्रिकेट टीम ने 17 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए ICC पुरुष 2020 विश्व कप 2024 का खिताब जीता। भारत ने रोहित शर्मा की अगुवाई में पूरे टूर्नामेंट में अजय रहते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जताया। हालांकि इस जीत के साथ ही क्रिकेट के इस फॉर्मेट में एक युग का भी अंत हुआ। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविन्द्र जडेजा ने 2020 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। सिंधु और युवा खिलाड़ी अनमोल खरब की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता। उधर लक्ष्य सेन ने पेरिस में सेमीफाइनल तक का सफर तय कर इतिहास रचा। इससे पहले कोई भी भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ओलंपिक में शीर्ष 4 में जगह नहीं बना सका था। खेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से समर्थन मिलने के बाद भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस में ऐतिहासिक 29 पदक जीते। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी मेडल टैली रही। इस साल भारत ने शतरंज में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल की। भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीते। साल के अंत में डी कुकेश और कोनेरू हम्पी ने विश्व खिताब अपने अपने नाम किए। स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने हैरत अंगेज उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 9 PSA चैलेंजर्स टाइटल्स जीते। टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब मैथ्यू एबडन के साथ जीता। ये बोपन्ना का पहला पुरुष डबल्स ग्रैंड खिताब था। लेकिन खास बात ये रही कि 43 साल 9 महीने की उम्र में ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। देश के कुछ अन्य शीर्ष खिलाड़ियों ने भी इस साल खेल की दुनिया को अलविदा कहा। लेजेंड फुटबॉलर सुनील छेत्री ने लगभग 2 दशकों तक इस खेल की सेवा करने के बाद संन्यास ले लिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले दिग्गज गोलकीपर PR श्रीजेश ने भी अपने सुनहरे करियर को अलविदा कह दिया। भारतीय खेलों में इस साल एक और बड़ा संन्यास जिमनास्ट दीपा कर्माकर का भी रहा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन।
भोपाल में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में आज महाराष्ट्र के अनन्या नायडू ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 252.5 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने रेलवे की मेघना सजनार को नजदीकी मुकाबले में हराकर पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। 10 मीटर एयर राइफल जूनियर महिला स्पर्धा में गौतमी भनोट ने पहला स्थान हासिल किया। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुई। फुटबॉल के फाइनल मैच में संथाल परगना ने केरल को टाई ब्रेकर में 4-1 से हराकर खिताब जीता। मुंबई के आयुष महात्रे ने आज लिस्ट ए क्रिकेट में 150 से अधिक रन बनाने वाले सबसे कम उम्र का खिलाड़ी होने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। और अब घड़ी की सुइयां कह रही कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो गिरीश, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका भी।
दोस्तों, हमें भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।